शांति। थोड़े खुले खुले होकर बैठे तो हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है, हमारे बीच में पधारे हैं आदरणीय राजयोगिनी डॉक्टर निर्मला दीदी जी। हम एक हाथ हिलाकर दीदी का स्वागत करते हैं, सत्कार करते हैं, अभिनंदन करते हैं। यज्ञ की स्थापना शिव बाबा ने 1936 में की और निर्मला दीदी का लौकिक जन्म यज्ञ स्थापना से एक वर्ष पूर्व 1935 में मुंबई महानगरी में हुआ। बचपन से ही मानवता की सेवा का लक्ष्य रहा, सो आपने पढ़ाई भी डॉक्टरी की कि जिसके सहारे मानवता की सेवा की जाए। लेकिन जैसे ही MBBS की पढ़ाई पूरी की 1962 में, बाबा भी मिल गए, बाबा का ज्ञान मिला, ज्ञान को जीवन में उतारते रहे और फिर बाबा के ही श्रीमत अनुसार आपने सेंटर और क्लिनिक दोनों खोला। दीदी पहली वो कन्या है जिसको पिता ने दहेज के रूप में सेंटर दिया। 1966 से 1971 तक आप मेडिटेशन और मेडिकेशन दोनों की प्रैक्टिस करती रही, दोनों तरीके से मानवता को लाभ पहुंचाते रहे। और फिर बाबा ने 1971 में आप जैसे अनमोल रतन को विदेश यात्रा के लिए सिलेक्ट किया। तो 1971 से लेके 78 तक आप विदेश में खूब यात्राएं करते रहे। आरंभ में तो आप लंदन गए, यूनाइटेड किंगडम में सेवा केंद्र खुला, उसके बाद आप अफ्रीका भी गए, ऑस्ट्रेलिया गए, मॉरिशस गए, ऐसे कई वर्षों तक विदेश में ही बाबा की सेवाएं करते रहे। और 1978 में ऑस्ट्रेलिया, जहां 75 में भी विजिट करके सेवाएं आरंभ की थी, 78 में ऑस्ट्रेलिया को सिडनी को अपना बेस बनाया और वहां पर 1978 से लेकर 2008 तक आपने खूब सेवाओं का विस्तार किया। हम कहेंगे कि आप एशिया पैसिफिक रीजन के रीजनल कोऑर्डिनेटर हैं, जिसके अंतर्गत करीब आपकी सेवाओं का विस्तार 17-18 देशों तक है। लेकिन फिर जैसे कि ज्ञान सरोवर में ज्ञान सरोवर संभालने की जरूरत पड़ी, दादियां अव्यक्त होती गई, बाबा ने आपको 2009 में ज्ञान सरोवर अकेडमी का कार्यभार भी संभालने के लिए सौंपा। तो 2009 से दीदी हेडक्वार्टर में रहते हुए दोनों ही जिम्मेवारियां दोनों कंधों पर लेकर चल रही है, देश की भी जिम्मेवारी और विदेश की भी जिम्मेवारी। तो वर्तमान में तो हम कहेंगे एशिया पैसिफिक रीजन के रीजनल कोऑर्डिनेटर भी हैं, ज्ञान स्रोत अकेडमी के भी कोऑर्डिनेटर हैं। इन सब से बढ़कर आप हमारे यज्ञ के जॉइंट एडमिनिस्ट्रेटिव हेड हैं और भी काफी सारी जिम्मेवारियां आपके कंधों पर है। लेकिन वो सब होते हुए भी दीदी के जीवन में सदा ही इजीनेस दिखाई पड़ती है। जैसा आपका नाम है, आपकी उपस्थिति मात्र से वो वातावरण में वो निर्मलता के वाइब्रेशन अनुभव करना हम शुरू कर देते हैं। और दीदी बहुत ही मितभाषी हैं, बहुत कम शब्दों में बहुत बड़े बड़े संदेश दे देते हैं। तो आज हम दीदी से सुनेंगे उनके अनुभव के आधार से बैलेंस और ब्लेसिंग। तो दीदी इस पर प्रकाश डालेंगे करीब आधे घंटे तक और उसके बाद आप सबको खुली मार्जिन है दीदी से सवाल पूछने और उसका उत्तर प्राप्त करने की। तो सुनते हैं दीदी को, आदरणीय दीदी जी।
ओम शांति। आज ब्लेसिंग था साधना और साधन का बैलेंस हो, क्योंकि आजकल हमारे पास बहुत साधन है, सेंटर शुरू करते ही कहेंगे हमको कंप्यूटर चाहिए, हमको टीवी चाहिए, म्यूजिक के लिए टेप रिकॉर्डर चाहिए, एग्जीबिशन के पिक्चर्स चाहिए, लाइटिंग चाहिए, पावर पॉइंट दिखाना है आदि आदि। तो क्या है कि साधनों पर हम डिपेंडेंट हो, साधना करेंगे तो क्या होगा, जितनी हम साधना करेंगे तो क्या है कि साधन नहीं होगा तो हलचल होंगे, पर साधना करने से हलचल नहीं होंगे। तो इसलिए हमें साधना करनी है। हम योगी है, तपस्वी है, नेचुरली तपस्या करनी है। साधना के लिए हमें एक से सर्व संबंध रखने हैं, बाबा से सर्व संबंध, देह के संबंधियों से न्यारे नष्ट मोह, एकांत पसंद बनना है। कईयों को क्या होता है, जैसे भी फ्री हुए घर वाले टीवी करेंगे या तो फोन उठाएंगे, फ्रेंड्स को फोन करेंगे, क्या है, कैसे है, क्या हो रहा है, क्या खाया आदि आदि। परंतु बाबा कहते हैं एक के अंत में रहो, एकाग्र हो के रहो, अमृत वेला। जैसे जैसे हम पुराने होते हैं तो क्या है, बिंदु बनकर बिंदु को याद करना है और व्यर्थ को फुल स्टॉप लगाना है। शुरू में भल हम विचार सागर मंथन करेंगे, बाबा से बातचीत करेंगे, फिर फरिश्ता बनकर उड़ते रहेंगे और अंत में बिंदु बनना। कर्मयोगी है हम, कर्म करते करते बाबा की याद में रहना है और सायं आधा घंटा से एक घंटा योग करना है। मधुबन में 6:30 से 7:30 योग होता है, अपने घर में अपना टाइम रखना है। भोजन के पहले, सोने के पहले बाबा की याद में रहना है, बाबा को साथी बनाना। साथी बनाएंगे तो भी थोड़ी गड़बड़ होने की मार्जिन है, माया बीच में आ सकती है और कोई व्यक्ति आ सकती है बीच में कंबाइंड। साधनों को यूज करना है, ऐसे नहीं कि नहीं यूज करना है, परंतु योग के लिए, सेवा के लिए यूज करो, परंतु उसको आधार नहीं बनाओ। साधना द्वारा अपनी स्थिति ऐसी ऊंची बनानी है जो लोगों को आत्मा का, परमात्मा का, फरिश्ते का, अपने इष्ट देव का साक्षात्कार हो। और आजकल बाबा कहते हैं कि जो श्रोता है उनको अनुभव हो, अनुभव होगा तो कभी नहीं भूलेंगे, नहीं तो क्या है, बाबा को भूल जाएंगे। इसलिए अनुभव कराओ। दूसरा, जीवन में हमें, हम कहते हैं हमें ब्रह्मा बाबा मम्मा को फॉलो करना है। उन्होंने अपने जीवन में बैलेंस रखा, ब्रह्मा बाबा के साथ लौकिक परिवार भी रहता था। 14 साल लौकिक अलौकिक परिवार साथ में रहा, पर कभी अपने लौकिक को फेवर नहीं किया। मम्मा को हेड बनाया, अपनी बेटी या बहू, क्योंकि निर्मल शांता दादी, ब्रजेंद्रा दादी भी ज्ञान में पक्के थे, उनको नई पोजीशन दी, मम्मा को दी। उनके पास लव और लॉ का बैलेंस था, जो भी मिलते थे उनको फीलिंग आती थी कि हमारा पिता है। और बाबा को भी यही फीलिंग थी, मेरे बच्चे हैं सब। पर कायदा भी, मर्यादा कायदा ठीक उस पर चलाते थे। उनका इतना प्यार सिर्फ मनुष्य आत्मा के लिए नहीं था, कुत्ते को भी बच्चा कहेगा, चिड़िया को भी बिच्छू कहेगा, और यहाँ झोंपड़ी में जब आता था ना, एक चिड़िया आती थी और लच्छू ब्राह्मणी थी, तो लच्छू के कहता था, बच्ची इस बच्ची को टोली दो, तो रोज टोली खिलाते थे और रोज आती थी वो। स्वीट भी थे तो स्ट्रिक्ट भी थे, क्या था कि एक बारी होली मनाने सब दादियों को बुलाया, क्या वो मधुबन में, मधुबन में होली मनाओ। तो सब दादियाँ आ गई। जानकी दादी आई और दूसरे दिन बाबा ने कहा कि हरिद्वार में कॉन्फ्रेंस है, जाओ। दादी गए, मैं तो होली मनाने आई हूँ। बाबा कहे नहीं, जाना है। और वो थोड़ी नाराज थी, तो बाबा कितने दिनों तक बात नहीं की, स्ट्रिक्ट थे, इकोनॉमी कराते थे, कम खर्च वाला मशीन। हम लोग दिल्ली बॉम्बे से फल ले आते थे, क्योंकि यहाँ तो कुछ फल निकलता नहीं, तो देखते थे बाबा फल कैसा है, कितना खर्च किया। यदि ज्यादा खर्च किया है, बाबा को मालूम था सबकी प्राइस, तो कहते थे अच्छे ग्राहक नहीं हो, कभी कभी हजाम का टाइटल भी दे दे। और दूसरी तरफ उदार दिल भी था, सबको देखता था कि गरम कपड़े हैं ना, और लेबरर्स के पास यदि गरम कपड़े नहीं होते थे तो उसी समय लच्छू को कहता था, बेटी इसको स्वेटर दो। और अभी तक भी मधुबन में हर सर्दी के दिनों में हर एक को एक ब्लैंकेट मिलता। तब से बाबा ने शुरू किया था। और रमेश भाई आता था ना, मुट्ठी भर कटोली इसके मुंह में डालते थे। और अभी भी देखो, जिस स्टेट से ब्राह्मण आते हैं, खाना ऐसा बनाएंगे, साउथ इंडियन है, इडली सांभार, कॉफी, छाछ सब देंगे जरूर। नॉर्थ इंडिया वाले आएंगे तो ऐसा खाना बनाएंगे। लौकिक को भी अलौकिक दृष्टि से देखते थे और लौकिक को ज्यादा फेवर नहीं करते थे। कोई भी ऐसे नहीं कहता कि बाबा ने निर्मल शांता दादी को कुछ ज्यादा दिया है या ऐसे, नहीं। पूछ के अपनी सारी प्रॉपर्टी ट्रस्ट को दे दी और नव माताओं को ट्रस्टी बनाया। फिर जब नारायण दादा ने यज्ञ से छुट्टी ली, यहां से अहमदाबाद की टिकट, पीछे तुम अपना जानो, जो करना है करो, तो न्यारा। और हमें शरीर और आत्मा का भी बैलेंस रखना है, शरीर को भी देखना है। यहाँ तो हम तीन टाइम पका के खाते हैं ना, चौथी टाइम कभी कभी चाय के साथ नाश्ता भी ले लेते हैं। विदेश में क्या करते हैं, उनको टाइम नहीं रहता है, तो सवेरे ब्रेड का टोस्ट बनाएंगे, दिन में लंच के लिए नौकरी पर सैंडविच ले जाएंगे, या तो एप्पल है या गाजर है ले जाएंगे। शाम को आकर या तो सवेरे या तो शाम को एक बार खाना पकाएंगे, वो भी कभी पकाएंगे कभी नहीं पकाएंगे। और कई ब्राह्मण हमने देखा 1:30-2 बजे उठ जाते हैं, 3-4 घंटा योग करते हैं, तो शरीर को भी बाबा कहते 5 घंटा तो कम से कम रेस्ट दो रात को। और आत्मा को भी योग द्वारा शक्ति दो, मुरली द्वारा आत्मा की उन्नति करो। ऐसे नहीं, हम तो बाबा के बच्चे हैं ना, चलते फिरते याद कर लेंगे, नहीं बैठ के याद करना। बैलेंस रखना है याद और सेवा का। सेवा भी करो याद भी करो। कई लोग हैं सेवा करते करते रात को 11 बज जाता है, फिर सवेरे उठ नहीं सकते। और कई है जो बाबा को याद के लिए बैठते नहीं है, ये ठीक नहीं है। फिर बैलेंस एकांत, एकांत भी एंजॉय करो। ऐसे नहीं कहो कि मैं अकेलापन फील करता हूं, मैं एक अकेले है, बाबा को याद करो, बाबा को साथी बनाया, साजन बनाया है, फ्रेंड बनाया है, याद करो। और संगठन है, बड़ा गैदरिंग है, उसमें भी खुश रहो। कोई कहता है हमको गैदरिंग अच्छा नहीं लगता, ये नहीं, जहां है खुश रहो। बैलेंस जिम्मेवार और निमित्त। बाबा हमें जिम्मेवारी दी है, कौन सी बड़ी जिम्मेवारी दी है, सारे विश्व को परिवर्तन करने के, तो जिम्मेवार भी रहो। परंतु ये समझो मैं निमित्त हूं, करावनहार बाबा है, तो क्या है, बाबा करावनहार है तो हमें भारी नहीं होना है। मेरा बच्चा, मेरा परिवार, मेरे नौकरी, मेरा धंधा नहीं, मेरे को तेरे में परिवर्तन करो, सब कुछ बाबा का, तो हल्के रहेंगे। बिजी भी रहो तो इजी भी रहो। नम्रता भी हो, ब्रह्मा बाबा नमस्ते करते थे रोज, कभी ऐसे नहीं कि बच्चे नमस्ते करें, या वहाँ तो क्या है, भक्ति में गुरु के पांव पड़ेंगे, चरण धो के पिएंगे आदि आदि। बाबा कहते हैं मेरे बच्चे मेरे दिल तख्त नशीन है, मैं अपने नैनों की पलकों पर उन्हों को ले जाऊंगा। तो पहले नमस्ते करते थे, पर नशा भी रहता था, क्योंकि हिस्ट्री हॉल में कृष्ण का और लक्ष्मी नारायण का चित्र ट्रांसलाइट वे थे तभी ही बनाए थे, तो नशा रहता था। कल जाकर मैं ये मिचनो कृष्ण बनूंगा, मैं बाबा का लाडला बच्चा हूँ, नशा रहता था। बालक और मालिक, बालक बन के राय लेता था। क्या है कि उस समय बाबा के टाइम में ब्रिजमोहन भाई, रमेश भाई, जगदीश भाई लौकिक दुनिया के अनुभवी थे, तो कभी कभी उनकी राय भी लेते थे, और रमेश भाई की राय से वर्ल्ड रिन्यूअल स्पिरिचुअल ट्रस्ट बनाया। पहले तो कहते थे कि ब्रह्मा कुमारी को हम लौकिक गवर्नमेंट में रजिस्टर नहीं करेंगे, फिर रमेश भाई ने उनको कन्विंस किया कि विदेश का पैसा आता है तो ट्रस्ट होंगे तो हमको टैक्स नहीं भरना पड़ेगा, तो ये किया। बैलेंस स्व सेवा और विश्व सेवा का, अपने लिए भी योग और मुरली जरूर पढ़नी है या सुननी है, और अमृत वेला भी करना। और विश्व सेवा का तो सबको शौक है, बेहद की सेवा करनी है। अंतर्मुखी और रमणीक, बाबा अंतर्मुखी रहते थे और रमणीक भी थे। उन्होंने क्या किया, दादी प्रकाशमणि बम्बई में थी और इतनी सेवा नहीं होती थी, तो मरी हुई मक्खी पोस्ट में भेजी कि तुम मक्खियां मारती हो ना, बाबा हर एक को सावधान भी करते थे तो शुभकामना भी रखते थे। कभी ये नहीं कहना चाहिए कि ये तो है ही ऐसा, बदलने वाला नहीं है, तो ये क्या हुआ, श्राप हो गया कि ये बदलेगा जरूर। बाबा की मदद से, हमारी शुभकामना से सब बदलेंगे। और बाबा का जो अंतिम शब्द थे, निराकारी निरहंकारी निर्विकारी, तो सिर्फ शब्द न रहे परंतु प्रैक्टिकल में, प्रैक्टिकल में बाबा हमेशा निराकारी निरंकारी और निर्विकारी। तो हमारा भी क्या लक्ष्य होना चाहिए? बाप समान बनना। और धीरे धीरे देह का भान बिल्कुल छूट जाए, मैं आत्मा हूं ये पक्का हो जाए, हरेक को आत्मिक दृष्टि से देखना है। और अंतर्मुखी होके अपने आप को देखना है कि हमारे में कोई विकार तो नहीं। विकारों को जीतना है, काम विकार के बदले हर एक के लिए शुद्ध प्यार हो, क्रोध के बजाय सहनशील शीतल बनना, मोह के बजाय रूहानी प्यार हो, आलस्य के बजाय उमंग उत्साह हो, केयरलेस नहीं रहना है, केयरफुल रहना, क्योंकि हमारा संकल्प समय बोल कर्म सब वैल्यूएबल है। संगम युग में व्यर्थ नहीं गंवाना है, उसकी वैल्यू समझ करके हमें बचाना, जमा का खाता बढ़ाना है, व्यर्थ नहीं गंवाना। ईर्ष्या के बदले हर एक के लिए रिस्पेक्ट रहे, क्योंकि कंपेयर करते हैं ना, कभी कभी कंपेयर करते हैं, कंपटीशन में होते हैं तो ईर्ष्या आती है कि देखो इसको ज्यादा मान मिलता है, चांस मिलता है, हमको चांस नहीं मिलता। याद नहीं, जिसमें स्पेशलिटी है उसको रिस्पेक्ट दो और खुद स्वमान में रहो। स्वमान बढ़ाना, जितना स्वमान बढ़ाएंगे तो नेचुरली है कि ईर्ष्या नहीं रहेंगे और किसी से वैर ना हो, घृणा ना हो। जैसे बाबा ने हम जैसे थे स्वीकार किया ना, हमको घृणा तो नहीं की कि आप होपलेस हो, शूद्र हो, नहीं, प्यार की शुभ भावना से हमें ऊंचा उठाया। ऐसे हमें भी सबके प्रति शुभ भावना रखनी है। तो बाबा हम बच्चों को शक्ति भरते हैं, तो हमें क्या करना है? याद करना। बाबा कहते हैं और कुछ नहीं, मुझे याद करो और स्वदर्शन घुमाओ, तो क्या होगा? चक्रवर्ती राजा बनेंगे, सत्युगी सूर्यवंशी राजा बने। एयर कंडीशन टिकट लेनी है सूर्यवंशी, चंद्रवंशी फर्स्ट क्लास है और प्रजा थर्ड क्लास है। हाँ, तो लक्ष्य गॉडली स्टूडेंट का ऊंचा होना चाहिए और उसी रीत से सेवा करनी है। ओम शांति।
तो दीदी ने बहुत सुंदर शिक्षाओं से आपको भरपूर किया। अभी जैसे हमने कहा था, किसी को कोई प्रश्न हो तो सामने आएंगे, माइक पर बोलेंगे, ज्ञान योग से रिलेटेड हो या दीदी के अनुभव से, विदेश यात्रा की सेवाओं से, जो भी आप पूछना चाहें। टीचर बहन को पहले ऑफर करते हैं, आके पूछना चाहे कोई प्रश्न। टीचर बहन आना चाहेगी, कोई दीदी का प्रश्न पूछने का है? जल्दी आइए, समय पूरा हो जाएगा, नहीं तो यूं ही। और दूसरे रेडी रहेंगे, आप स्वयं पूछिए।
ओम शांति दीदी जी, ऐसे कंबाइंड स्वरूप का अनुभव तो है, फिर भी रियल मीनिंग कंबाइंड स्वरूप का क्या है वो थोड़ा सा क्लियर जानना चाहते हैं।
क्या स्वरूप?
कंबाइंड स्वरूप।
कंबाइंड स्वरूप, बाबा मेरा मेरे साथ है, तो साथ नहीं कंबाइंड है, अकेले नहीं है हम, बाबा हमारे साथ सदा है। तो जैसे हमने बताया, साथी होता है, हो सकता है बीच में गैप हो तो कोई घुस जा सकता है, पर कंबाइंड है। देखो, कई बच्चे जन्मते हैं ना, तो वो कंबाइंड होते हैं, ऑपरेशन करके अलग करना पड़ता है। इसी रीत से बाबा के साथ हमारा इतना अच्छा संबंध हो कि कोई भी हमें अलग कर सके, तो जितना हम बाबा के साथ कंबाइन रहेंगे, तो जैसे कि फील करेंगे कि हम मास्टर ऑलमाइटी ऑथोरिटी है, तो इसलिए मास्टर ऑलमाइटी ऑथोरिटी बन हमको चलना है।
दीदी, दूसरा प्रश्न आया है, बाबा कहते हैं अब पढ़ाई पढ़ लो, और अगर नहीं पढ़ी अभी तो कल्प कल्प के मालिक नहीं बन सकेंगे। अभी पढ़ाई पढ़ लो, नहीं तो कल्प कल्प के मालिक नहीं बन सकेंगे, इस पर थोड़ा सा प्रकाश।
कहते हैं ना, पढ़ेंगे लिखेंगे तो होंगे नवाब। और खेलेंगे कूदेंगे या फिरेंगे तो होंगे खराब। तो क्या है, गॉडली स्टूडेंट यदि मुरली नहीं सुनते तो क्या होगा, ना पास। और ड्रामा ऐसा है, कल्प कल्प वही रिपीट होगा, तो हर कल्प ना पास होंगे। इसलिए बाबा कहते हैं पढ़ाई और योग दोनों के ऊपर बहुत ध्यान दो, ताकि आप विश्व के मालिक में। यही बाप की इच्छा है कि बच्चे विश्व के मालिक बने, ना पास होंगे तो द्वापर कलयुग में आएंगे।
ये प्रश्न बहुत ही कॉमन है, या यूं कहे कि पूछने लायक तो नहीं है, पर आया है। कोरोना महामारी बीमारी क्यों आई? कोरोना की महामारी क्यों आई और उससे बचने का उपाय?
अभी तो उससे भी भारी तकलीफ आने वाली है, कोरोना तो ऑलमोस्ट चला गया। क्या है कलयुग में हिसाब किताब चुक तो करना है ना, तो इसलिए हिसाब किताब चुक तो करना है। कोई सबको तो नहीं कोरोना का असर हुआ, सबको तो नहीं हुआ ना, किनको नहीं हुआ है जरा हाथ उठाना, देखो कितने हैं जिनको कोरोना ने असर नहीं किया। तो क्या है कर्म भोग यहाँ ही भोगना है, और कोरोना में भी कोई के तो ज़्यादा तकलीफ नहीं होती है, कोई को बहुत तकलीफ होती है, तो इसलिए यही समझना है जो कुछ ड्रामा में होता है कल्याण है। धर्मराजपुरी में सजा नहीं खानी पड़ेंगे।
अगला प्रश्न है, अगर सब कुछ ड्रामा में नूंद है, सब कुछ बनी बनाई जो हो रहा है वैसा है, तो फिर हम अपना भाग्य पुरुषार्थ से कैसे बनाते हैं?
पुरुषार्थ करना भी ड्रामा में नूंद है क्योंकि देखो आज आपको कोई खाना भी पका देते थे, चबाना तो आपको है, इसी रीत से पुरुषार्थ नहीं करेंगे तो प्रारब्ध कैसे बनेंगे। तो इसलिए अपने को यही समझना है कि मुझे पुरुषार्थ करके ऊंच पद पाना ही है, दृढ़ता पुरुषार्थ बढ़ाए, पुरुषार्थ होगा तब प्रारब्ध बनेंगे।
क्लियर हुआ जिसका भी प्रश्न था? माता जी आएंगे।
ओम शांति दीदी, मेरा ये प्रश्न है, बाबा जो कहते ना कि योग अग्नि से विकर्म विनाश होते हैं, बीज रूप अवस्था से, तो दीदी हमें ब्रह्मा बाबा को लेके जो योग लगाते, झूमते, खेलपाल करते, तब मुझको बहुत आनंद आता, तो क्या इससे विक्रम विनाश नहीं होते? एक ये है, और दूसरा दीदी जो अभी भाई जी ने पूछा था वो हमारे भी मन में चलता, जो कल्प कल्प का, तो अभी जैसे पढ़ाई पढ़ रहे हैं वो कर रहे, कल्प कल्प का जो बाबा कहते हैं कल्प कल्प का बन जाएगा, आपका हार होगी तो कल्प कल्प की, तो दीदी हमें कल्प में, उस कल्प में भी तो मौका मिलेगा जो दूसरा कल्प आएगा।
दूसरा कल्प तो आएगा ही ना, ड्रामा रिपीट हो रहा है, तो जो यहाँ हुआ है ना पास, तो दूसरे कल्प में भी ना पास होगा, क्योंकि कल्प कल्प रिपीट होता रहता है ड्रामा। और फर्स्ट प्रश्न क्या था?
कि ब्रह्मा बाबा के साथ खेलपाल करते हुए जो हम याद करते हैं उसमें बड़ा मजा आता है, लेकिन क्या उसमें विकर्म विनाश नहीं होते हैं?
विकर्म विनाश नहीं होंगे, विकर्म विनाश होंगे बिंदु अवस्था से, जितनी हमारी अवस्था बिंदु रहेंगे वो योग अग्नि होगा, तो योग अग्नि से हमारे पापस में होंगे। खेलपाल तो करने से मजा तो आएगा परंतु विकर्म विनाश।
अगला प्रश्न।
ओम शांति दीदी, अहम और वहम से निकल के रहम दिल बनना है,
दे दे दे।
तो इसका क्या?
अहम, बाबा कहते हैं ना अहम और वहम छोड़ो, रहम दिल बनो, इसका क्या अर्थ है?
अहम ईगो छोड़ना है, वहम डाउट छोड़, निश्चय रखो, और रहम करना है, सेवा करते रहम दिल बनना है, क्योंकि सेवा नाम के लिए नहीं करनी है। कई लोग क्या करते हैं, सेवा करते हैं नाम के लिए, तो ये नाम के लिए सेवा ना हो। पर तरस पड़े कि हमारे भाई बहन कितने दुखी है, बाबा आया है सुखी बनाने, तो क्यों ना हम उनको सुखी बनाएं। तो ईगो तो एक विकार है, अहम, और वहम से भी तो काम नहीं चलेगा ना। जितना बाबा में निश्चय होगा उतना ठीक रहेगा।
दीदी एक प्रश्न है, सफर के समय मतलब यात्रा के समय योग में विघ्न आता है क्योंकि परिवार के सदस्य साथ रहते हैं, क्या करूं? किसी का पर्सनल क्वेश्चन है ये।
परिवार
के सदस्य साथ में रहते हैं, जैसे रेल यात्रा कर रहे तो परिवार वाले साथ में बैठे, उस समय योग नहीं कर पाता हूँ।
यात्रा करता है
या
मधुबन की यात्रा या हरिद्वार की यात्रा?
हाँ, किसने पूछा ये?
और क्या है, परिवार को अभी लौकिक से अलौकिक बनाओ, मतलब अपनी बुद्धि में तो ये रहे ना कि ये बाबा के बच्चे हैं, मेरा परिवार है, ये ख्याल आया तो नेचुरली है मेरे में गड़बड़ हो जाती है। पर बाबा तेरे बच्चे हैं, ये बुद्धि में रहने से गड़बड़ नहीं होंगी, अपनी जिम्मेवारी भी बजाओ और निमित्त बन के उनके साथ में रहो।
लास्ट क्वेश्चन एक बचने को आया है।
ओम शांति दीदी जी, निराकारी निर्विकारी निरहंकारी बनने का क्या पुरुषार्थ, कैसे बने?
अटेंशन रहे, क्योंकि देवान में रहने की आदत हो गई है ना, तो अभी सारा समय मैं आत्मा हूं, तो निराकार स्थिति होंगी। निर्विकारी भी अपने आप को चेक करना है, रियलाइज करना है कि हमारे में कौन से विकार है, तो योग में उससे ऑपोजिट शक्ति लेनी है। जैसे हमने बताया लोभ है, तो बाबा से शक्ति संतुष्टता के लेनी है। बाबा ने इतना अविनाशी खजाना दिया है, अभी विनाशी खजाने की क्या दरकार है? तो इसी रीत से योग द्वारा निर्विकारी बन सकते हैं, निराकारी निरअंकारी अहम ना हो, क्योंकि ईगो सबको होता है, कुछ न कुछ विशेषता होती है तो ईगो हो जाता है कि मैं बहुत अच्छा आर्टिस्ट हूँ, मैं गोरी हूँ, मैं स्मार्ट हूँ, मैं प्रोफेसर हूँ, जो भी अपने में विशेषता होती है उसका अहंकार आता है। पर उस समय सोचो कि बाबा की कृपा से मेरे में ये विशेषता आई, क्योंकि जो विशेष लोग होते हैं ना, तो क्या होता है, जो सब जो ज्ञान के पहले भी कोई विशेष आत्मा है, म्यूजिशियन है, एक्टर है, तो हमारे पास ऑस्ट्रेलिया में एक्टर्स म्यूजिशियन आदि बहुत थे, अपना अनुभव सुनाते थे कि ज्ञान के पहले जब ओपनिंग होता था ना फर्स्ट डे, तो फर्स्ट डे ओपनिंग में रिपोर्टर आकर अपना रिपोर्ट देते हैं न्यूज़पेपर में, तो कहा तो हम नर्वस हो जाते थे। अभी ज्ञान के बाद हम नर्वस नहीं होते हैं, तो बाबा ने विशेषता में विशेषता देते हैं, तो इसलिए अपना अहंकार ना हो। जैसे आज भी मुरली में था ना, कोई पूछते हैं कितने बच्चे हैं, बाबा ने दिए हैं, कितना धन है, भगवान ने दिया है, तो बोलते समय तो बोलते हैं कि सब कुछ भगवान ने दिया है, परंतु मेरा है ये भूलता नहीं, तो ये छोड़ना है, भगवान का है, हम ट्रस्टी है, ये भगवान रहना चाहिए।
बस ये लास्ट प्रश्न है, टाइम तो हो गया है।
ओम शांति दीदी, मेरा ज्ञान से एक प्रश्न है। जब हम बाबा के ज्ञान से या दीदी जो हम लोगों को कोर्स कर रहे हैं, तो देखे है उसमें हमारा जो एकदम शिष्य चक्र के पहले से आता है उसका 84 जन्म होता है, 8, 12, 21, 42 और संगम युग में एक, यही सिखाया जाता है। और बाबा भी बीच बीच में मुरली में बोलते हैं कि ब्राह्मण जन्म आपका ये अंतिम जन्म है, ये बार बार मुरली में सुने। फिर भी जब कोई शरीर छोड़ता है ब्राह्मण बच्चा, तो हम लोग बोलते हैं कि उसका हिसाब किताब चुप नहीं हुआ है, फिर उसका जन्म लेना पड़ेगा। तो ये दोनों कंट्राडिक्टरी हो गया ना, तो सच क्या है? बाबा जो बोल रहा है ये लास्ट जन्म है आपका, और हम लोग बोल रहे हैं कि इसको फिर जन्म लेना पड़ेगा, इसका थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए।
कहता है कि जब हम कोर्स करते हैं तो हमें बताई जाते हैं 84 जन्म टोटल होते हैं, और फिर ये ब्राह्मण जन्म उस 84 जन्म में अंतिम जन्म बताया जाता है। लेकिन इस ब्राह्मण जन्म को जीते जीते जब कोई आत्मा शरीर छोड़ती है, तो कई बार ब्राह्मण आत्मा ही कह बैठती है ये दूसरे जन्म में फिर ब्राह्मण बनकर आएगा, तो ये तो 85 हो गए फिर।
ये अंतिम जन्म है, अभी जो शरीर छोड़ेगा ना वो एडवांस पार्टी में जाता है। आज से मैं समझती हूँ करीब 15 वर्ष से जब भी कोई शरीर छोड़ता है ना, छोड़ के गया है, उसका एडवांस पार्टी में जन्म हुआ है। तो ब्राह्मण जन्म अंतिम जन्म है, और बाद में विनाश के साथ तो सब विनाश हो जाएंगे। विनाश कब होगा ये अभी तक बाबा ने बताया नहीं है, परंतु अभी जो भी छोड़ते हैं एडवांस पार्टी में जाके, फिर सतयुगी बच्चों को जन्म देगी।
तो यहाँ पर अभी प्रश्न उत्तर का भी सत्र हम पूरा करते हैं, और अभी दीदी को एक हाथ हिलाकर धन्यवाद, शुक्रिया, आभार करते हैं, और बाबा की याद के साथ पूरा करते हैं। तो सबको अच्छा लगा। दादियां नहीं, पर दादियों की जिन्होंने पालना ली है वही अभी हमारे लिए दादियां हैं, तो दादियों की उपस्थिति से सब भरपूर हुए। हाँ, हाथ हिला दो अगर भरपूर हुए तो। दीदी को बहुत बहुत धन्यवाद।